इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओ, कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में नवजात के माँ का दूध पीने के अधिकार पर चर्चा करेंगे।
नवजात के पैदा होते ही जीवन को जारी रखना उसका सबसे अहम मसला होता है, क्योंकि बच्चा अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता। माँ वो हस्ती है जो नवजात से सबसे निकट होती है, और माँ के वजूद में ईश्वर की ओर से मुहैया की गई चीज़ नवजात का सबसे अच्छा आहार है। दूध पीने का दौर शारीरिक दृष्टि से बच्चे को मजबूत बनाता है और उसका मन माँ के व्यवहार व शिष्टाचार से प्रभावित होता है, जिससे बच्चे की परवरिश की पृष्ठभूमि मुहैया होती है। इसके अलावा बच्चे को दूध पिलाने से माँ को भी फायदा पहुँचता है। माँ के सीने में मौजूद आहार नवजात के जीवन के आरंभिक महीने का बेहतरीन आहार होता है। इस अधिकार को दिलाना बाप की जिम्मेदारी है कि वो माँ के जरिए बच्चे को दूध पिलाने का खर्च अदा करे।
पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों की शिक्षाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि नवजात को माँ का दूध मिले और इसे बेहतरीन आहार बताया गया है। जैसा कि ईश्वर बकरा नामक सूरह की आयत नंबर 233 में फरमाता है, माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये उसके लिए है जो इस मुद्दत को पूरा कराना चाहता है। बाप के लिए ज़रूरी है कि जितनी मुद्दत तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसके खाने पीने का खर्च वहन करे, चाहे माँ ने तलाक क्यों न ले लिया हो। किसी भी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। न माँ को पति से मतभेद की वजह से बच्चे को नुकसान पहुँचाने का अधिकार है और न ही बाप को। उसके वारिस पर ज़रूरी है कि इस काम को अंजाम दे। अगर वो दोनों आपसी सहमति व परामर्श से बच्चे का मुद्दत से पहले दूध छुड़ाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर माँ की अक्षमता या असहमति की वजह से बच्चे के लिए कोई दाया रखना चाहो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इस शर्त के साथ कि माँ के पिछले अधिकार को सही तरह अदा करो। ईश्वर की अवज्ञा से बचो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो उसे वो देखता है।
इस आयत में ईश्वर ने नवजात के आहार के संबंध में बहुत ही अहम बिंदु की ओर इशारा किया है। इस आयत का हुक्म माँ की प्रवृत्ति व स्वभाव के अनुसार है, क्योंकि माँ बच्चे से अलग होने के लिए तैयार नहीं होती। इसी वजह से माँ को 2 साल तक बाप पर वरीयता दी गई है। इस आयत की नज़र से नवजात को दूध देना एक ओर बच्चे का अधिकार है, दूसरी ओर माँ का अधिकार है। इसीलिए 2 साल तक बच्चे की रक्षा की दृष्टि माँ के अधिकार को वरीयता हासिल है।
नवजात के माँ का दूध पाने के अधिकार के बारे में बकरा सूरह की आयत नंबर 233 में कई अहम बिंदुओं का उल्लेख है। पहला ये कि इस आयत में कहा गया है कि माँ अपने बच्चे को पूरे 2 साल तक दूध पिलाए। इस आयत में अरबी का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो वालिदात शब्द है, जिसका अर्थ बच्चे को जन्म देने वाली माँ, जबकि अरबी में माँ के लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है और वो है उम्मा। इस शब्द के अर्थ में माँ की माँ अर्थात नानी भी शामिल होती है। इसी तरह आयत के इस भाग से ये समझा जा सकता है कि माँ को ये जिम्मेदारी सौंपना, जबकि बच्चे की सरपरस्ती बाप का अधिकार है, बच्चे और माँ दोनों के अधिकार को अहमियत देने के अर्थ में है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ बच्चे को खुद से दूर नहीं देख सकती।
दूसरे ये कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत उन लोगों के लिए है जो इसे पूरा करना चाहें। कभी बच्चे की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य की वजह से बच्चे को 2 साल से कम समय के लिए दूध पिलाया जाता है। तीसरे ये कि बाप की जिम्मेदारी है कि वो माँ का खर्च अदा करे कि बच्चे को दूध पिलाए। इस भाग में पवित्र कुरान में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है कि माँ की शान के लायक खर्च अदा करे। चौथे ये कि माँ बाप में किसी को ये अधिकार नहीं है कि उनके आपसी मतभेद की वजह से बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। पवित्र कुरान की व्याख्या की मशहूर किताब तफसीर नमूना के अनुसार इनमें से किसी एक को ये अधिकार नहीं है कि वे बच्चे के भविष्य को अपने मतभेद की बलि चढ़ा दें और नवजात के कोमल शरीर व आत्मा को नुकसान पहुँचाएँ। पांचवें ये कि इस आयत में बाप की मौत के विषय की ओर इशारा है कि वारिसों को चाहिए कि माँ की ज़रूरतों को पूरा करें जिस मुद्दत में वो बच्चे को दूध पिलाती है। छठे बच्चे की दूध छुड़ाई है। हालांकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल बयान की गई है, माँ बाप आपसी सहमति और बच्चे की शारीरिक स्थिति के मद्देनज़र 2 साल से पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं। सातवें ये कि अगर माँ ने किसी वजह से बच्चे को दूध पिलाने के अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया है या उसमें दूध पिलाने की क्षमता नहीं है तो इस आयत में इस मसले का हल भी मौजूद है। जैसा कि आयत के एक भाग में ईश्वर कह रहा है कि अगर माँ के अक्षम होने की वजह से अपनी संतान के लिए दाया रखना चाहते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस शर्त के साथ कि माँ के पिछले अधिकार को सही तरीके से अदा कर दो।
आयत के अंत में सभी से अनुशंसा की गई है कि ईश्वर से डरें और जान लें कि ईश्वर उनके सभी कर्म को देख रहा है। ये चेतावनी इसलिए है कि कहीं माँ बाप के बीच मतभेद या उनके बीच दूरी का बच्चे के भविष्य पर बुरा असर पड़े। माँ के दूध से बच्चे के आहार पर धर्म और चिकित्सा विज्ञान की ओर से बल दिए जाने के साथ ही इस्लाम ने माँ को यह अधिकार दिया है कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं है तो ये काम अंजाम न दे। धर्मशास्त्र की नज़र से नवजात को दूध पिलाना माँ पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशेष हालात में अनिवार्य हो जाता है। एक उस समय जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई दूसरी औरत न मिले। दूसरे ये कि दूसरी औरत मौजूद हो लेकिन बाप के पास दूसरी औरत का खर्च उठाने का पैसा न हो तो इस स्थिति में नवजात की माँ पर बच्चे को दूध पिलाना अनिवार्य हो जाता है। तीसरे ये कि नवजात माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का दूध न पिए। इसी तरह जब औरत बच्चे को कुछ मुद्दत तक दूध पिलाने के बाद ऐसा करने से मना कर दे और बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध न पिए तो माँ का बच्चे को दूध पिलाना अनिवार्य हो जाता है।
इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि बाल अधिकार कन्वेंशन में बच्चे के दूध पीने के अधिकार का वर्णन नहीं है, बल्कि सरकारों पर बल दिया गया है कि वे बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत का प्रचार करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माँ के दूध से नवजात के आहार का प्रचार किया गया है। वर्ष 1981 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने माँ के दूध के स्थानापन्न पदार्थ को बेचने के तरीके के बारे में कानून पारित किया। इस कानून की पहली धारा में इस कानून का उद्देश्य यूं बयान हुआ है, माँ के दूध के आहार का समर्थन और उसे बढ़ावा देते तथा माँ के दूध के स्थानापन्न पदार्थ के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हुए नवजातों के लिए स्वस्थ आहार की उपलब्धि में मदद करना। इसी तरह उक्त कानून को लागू कराने के लिए वर्ष 1990 में इंसेंटी डिक्लेरेशन नामक घोषणा पत्र माँ के दूध से बच्चे के आहार का समर्थन और उसे बढ़ावा देने के बारे में देशों के राष्ट्रीय कर्तव्य के उद्देश्य से पारित हुआ। बाल अधिकार समिति ने उक्त सिफारिशों के सरकारों द्वारा लागू होने के बारे में कुछ देशों से रिपोर्टें तैयार की हैं।
कुछ रवायतों में इस बात पर बल दिया गया है कि 6 महीने की उम्र तक बच्चे के लिए माँ का दूध पानी और आहार दोनों ज़रूरतों को पूरी करता है। आज वैज्ञानिक शोध के नाम से जो ये कहा जा रहा है कि नवजात सिर्फ माँ का दूध पिए, पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के कथनों में इसका पहले ही वर्णन हो चुका है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर साथी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, ईश्वर ने नवजात की रोज़ी माँ के दोनों तरफ मुहैया की है। नवजात के पैदा होते समय एक भाग में पानी और दूसरे भाग में उसका आहार उसकी हर दिन की ज़रूरत के अनुसार निर्धारित की है।
इसी तरह पैगंबर इस्लाम के परपौत्र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से ये रवायत है कि नवजात को माँ के बाईं तरफ से दूध पिलाया जाए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुए शोध से ये बात साबित हुई कि इसका कारण यह है कि बाईं तरफ इंसान का दिल होता है और बाईं तरफ का दूध पीने से बच्चे को माँ के दिल की धड़कन सुनकर सुकून मिलता है। बाईं तरफ से दूध पिलाने की अनुशंसा इसीलिए की गई है।
माँ का बच्चे को दूध पिलाना सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि माँ के लिए भी फायदेमंद है। जिस समय नवजात दूध पीता है तो माँ के गर्भ की मांसपेशियों में खींचाव आता है, जिससे खून की नसें आपस में मिलती हैं और खून बहना रुक जाता है। इसके अलावा माँ के बदन में गर्भ धारण के समय इकट्ठा होने वाली वसा भी जल्द खत्म हो जाती है और शरीर पहली वाली हालत में लौट आता है। इसके अलावा दूध पिलाते वक्त माँ के मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि वो गर्भ धारण व पैदाइश के वक्त की तकलीफों को भूल जाती है।